Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi bi nimetihi tetimmu salihat. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala hame nikal kar duniya ke hangamon se is kitab ko seekhne ke liye le aata. Kabhi hum Quran Pak ka text padhte hain, کبھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے تھے ایک راہبر کی حیثیت میں، اور اب ہم اللہ کی توفیق سے دعائیں سیکھنے لگے ہیں. اور دعا مانگنا ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کو آپ اگر اس اینگل سے دیکھیں کہ سب سے آسان عبادت، مانگ بھی آپ اپنے لیے رہے اور جو مانگیں گے وہ ملنا بھی آپ کو ہی ہے، تو پھر کیسے ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بے بس کر دے، دور کر دے کہ میں اس سے عاجز آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے میرے لیے اس سارے سلسلے کو آسان کرے. انشاء اللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے سونے کے وقت جو کچھ بھی اس مسنون طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے اس کو، یعنی معمولات رسول جو ہمارے پاس تھے وہ کیا تھے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اور سونے کے اذکار یہ سب بتاتے ہیں کہ ایک مومن کا سونا بھی اللہ کے لیے اور اس کا جاگنا بھی اللہ کے لیے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر سوتے ہیں تو پوری رات آپ کا ایک کروٹ لینا بھی اللہ کے حکم سے عبادت میں شمار ہوتا ہے. انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس کو دیکھیں گے، اور واقعی دل خوش ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ ہمارا رب تو ہماری رات کی کروٹوں پر بھی ہمیں اجر دیتا ہے. ہم ابھی تک 8 مختلف اذکار، دعائیں یا کہہ لیجئے کہ 2 صورتیں بھی کر چکے، پھر اس کے بعد معوذات تھیں، 8 چیزیں جس کا آپ خلاصہ بھی کر چکے. اب ہم چلیں گے 9واں ذکر یا 9واں عمل، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوت امری الیک ووجہت وجہی الیک ولجات زہری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا. اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات. میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا. خوبصورت دعا، خوبصورت الفاظ ہیں. اگر آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ہینڈز اپ اور سرنڈر، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا. آپ دیکھیے کہ انسان جب اپنے بوجھ خود اٹھائے پھرتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اٹھانا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی ساری چیزیں جمع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. آپ کے میرے لیے ان دعاؤں کو پڑھتے وقت جو سوچ ہونی چاہیے، اپنی بے بسی کا احساس، کمزوری کا احساس، اپنے ضعف کا احساس، اپنی فقیری کا احساس. کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات آپ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جب میں نے آپ نے اپنا نفس ہی اللہ کو دے دیا تو کیا پھر ہمارا نفس نفس ہمارا بنے گا؟ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اور اس کے شرور سے بچا لیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ففوست امری الیک، اپنے معاملے رب کو سونپے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو کام ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ ختم نہیں ہوتے. دن ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے. تو آپ سوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میرے سارے معاملے تیرے حوالے، میں نے کیا کرنا ہے اپنے کاموں کو، تو کر میرے کام، اور جیسے تو کر سکتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے دن کے کام، دین کے، دنیا کے، بچوں کے، گھروں کے، جو بھی ہماری ذمہ داریاں، اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا تو آپ کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو اللہ پہ نظریں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، एक तो आप दाईं करवट सो रहे हैं, आपका रुख दाईं तरफ है, दूसरी बात है आप अपना चेहरा भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते हैं, यानी एक तो सोने का पोस्चर है, एक इंसान के अंदर की भी बात है कि अल्लाह मुझे हर चीज़ में तेरा चेहरा चाहिए, तेरी तवज्जो चाहिए, तेरी तरफ रुजू करता हूँ और अपनी पुश्त तेरी तरफ झुकाई, सवाब में रग़बत करते हुए और तेरे अजाब से डरते हुए। कभी ऐसी प्यारी बातें आपने अपने लफ्ज़ों में अल्लाह से की? और क्या कानों में हेडफोन हो और आंखें कुछ और देखती देखती ही सो जाएं? कितना फर्क है एक मोमिन के सोने में और एक गैर मोमिन के सोने में। मोमिन का सोना इबादत क्यों है? इसलिए कि वो सोने से पहले ही ये सारे इख्तमाम करता है और जागते हुए भी अल्लाह ही का नाम लेगा। तो याद रखिए कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं, इसी तरह फाजिर और ईमान वाले बराबर नहीं है। तो जब इंसान सोता है तो ऐसे महसूस करता है कि मैं आज खुद अपनी कब्र में डल रहा हूँ, कहीं अल्लाह से अपनी छोटी मोटी नेकियों की तरफ रग़बत भी है और अजाबों का डर भी है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह है, ना जाए नहीं जा, जाऊं तो किधर जाऊं। आप देखिए, बच्चा जब माँ के पास होता है ना, तो माँ उसको मारे या माँ उसको डांटे ना, तो बच्चा फिर उसी माँ की तरफ आता है, अल्लाह बता मैं जाऊं तो किधर जाऊं, पनाह लूं तो किसकी लूं, है कौन मेरा तेरे सिवा। कभी आप अल्लाह के नबी की दुआए ताइफ पढ़े ना, जिसको दुआए मुस्तदफीन भी कहते हैं, यकीन करे बिल्कुल ऐसे ही अंदाज है। अल्लाह फिर तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? अल्लाह फिर मैं किसको कहूँ? अल्लाह अगर तू मेरा साथ छोड़ देगा तो मेरा कौन देगा? ये इल्हा और ये आहो जारियां ये अल्लाह की रहमत को जोश मिलाती हैं। और फिर तेरी किताब पर ईमान लाया जिसे तूने नाजिल किया, यानी आंख बंद होते होते भी किताब का ख्याल है, और तेरे नबी पर ईमान जिसे तूने भेजा। इतना प्यारा पैगाम, इतनी खूबसूरत बातें, करता करता एक बंदा नींद की आगोश में चला जाता है कि अगर इस आगोश से निकलकर अगर कहीं और भी जाना पड़ा तो अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचते वक्त आप जरा सा इस दुआ को दोहराइए, सीखने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बोलिए पीछे। आप नहीं बोलेंगे तो लफ्ज़ सामने नहीं आएंगे। और याद रखिए, ये वो दुआ है जो अल्लाह के नबी ने बरा बिन आज़िब को सिखाई थी, तो कहा मुझे सुनाओ। तो जब वो सुना रहे थे ना, तो आप अभी नोट करेंगे इसमें कि जहाँ ये लफ्ज़ आता है ना, वह भी नबी ही कल्लज़ी अरसलता, तो उन्होंने सुनाने में ये कह दिया वह भी रसूली कल्लज़ी अरसलता। और आगे देखिए, अरसलता से तो लग रहा है रसूली का आएगा लफ्ज़, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि बरा वो कहिए जो मैंने कहा। और ये रिवायत बुखारी 6313 और मुस्लिम 2710 पे। तो इन लफ्ज़ों का फ़र्क रखते हुए आइए इस दुआ को मिलकर मांगते हैं और सीखते हैं इसको। जितनी आवाज़ से आप पढ़ेंगे ना, आप महसूस करेंगे, आपके कान भी सुनेंगे।
اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك، ولجأت ظهري إليك، ولجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك. كتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
الحمد لله. آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ میں محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. جب ہم رات کو سوتے وقت اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات رکھیں گے اور جب سمجھ آئے گی, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ میں نے اپنا معاملات یا اپنا نفس تیرے تابع کر دیا, جب یہ بولیں نا تو ساتھ ہی کہیں اللہ مجھے نفس امارہ سے بچا, اے اللہ شیطان سے بچا, اے اللہ مجھے اب تیرا ہی تابع رکھ, مجھے سمینا کے بعد اطانا کہنا سکھا. غیر محسوس طریقے سے ایک دن دو دن تین دن آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. کچھ چیزیں غیر شعوری طور پہ بھی ہم بول دیتے ہیں نا, اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فطری سی پاکیزگی اور نفس کی خوبصورتی آپ کو اپنے اندر دکھے گی. سچ بتائیے کہ ہم خود اپنے آپ سے بھی کئی جگہ تنگ نہیں ہوتے, اپنے نفس کے غلبے, اپنی عادت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں, بعد میں شرمندگی ہوتی, غصہ بھی آتا ہے. یہ جو ریگریٹ ہے نا, یہ اسی کا نام ہے کہ آپ وہ کر دیتے ہیں جو آپ نے خود بھی نہیں تھا کرنا. تو اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے رب کا قرب پائیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں دسواں عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا تین مرتبہ پڑھتے, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اے اللہ مجھے اس دن سے, یعنی اپنے مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا. اشارہ قیامت کی طرف ہے کیونکہ فکر تو اسی دن کی لگی ہوئی ہے نا, اور یاد رکھیے وہ اٹھائے جانے کا دن یاد رہے نا تو فجر میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے کھڑا ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ روایت ابو داؤد کی 5045 ہے. اور آپ دیکھیے کہ دایاں ہاتھ یہاں بھی رخسار کے نیچے ہے اور انداز کتنا پیارا, کوئی بچہ بھی اس انداز میں سویا ہو تو اس سے بھی محبت محسوس ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے دوبارہ اٹھائے جانے دن کا عذاب کیا ہوگا, رسوائیوں کا عذاب, شرمساریوں کا عذاب. جیسے رزلٹ نکلتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کیسا ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا, تو دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس ان کی آفت سے بچا. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قبر کا عذاب ہی نہیں ہے, جہنم ہی نہیں ہے, بلکہ جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن بھی بہت سارے عذاب ہوں گے. آپ نے قیامت کے بیان میں پڑھا ہے, کتنی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو سمجھا تھا, قبر سے اٹھتے ہی بندے کے ساتھ کیا ہوگا, کیا عزت ملے گی, کیا گمراہی ہوگی, کیا بندے کے ساتھ تکلیف ہوگی. तो कब्र का बयान बुक जो हमने रिसेंटली पढ़ी है उसमें इन सारे सवालों का जवाब है। रात को सोते वक्त, बिस्तर पे लेटते वक्त असल में इंसान को कब्र में लिटाया जाना याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे साथ ये मामला होने वाला है। तो इस शऊर के साथ इसको कई बार पढ़िए और हर दफा पढ़ते वक्त आपके दिल दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही फिक्र हो, कौन सा दिन, यौम तब्बस इबादक। देखिए जब हम अपने ऊपर कोई चीज़ तारी करते हैं ना तो फिर हम उसको महसूस भी करते हैं। और लफ्ज़ अज़ाब पे भी गौर कीजिएगा, क्या कुछ उस दिन होने वाला है, क्या कुछ मतवक्के है, ऐ अल्लाह तू मुझे बचा लेना। आइए पढ़ते हैं।
قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك
आप देखिए कि इसमें लफ्ज इबादक भी बहुत अहम है। तेरे बंदे, हर एक को अल्लाह नहीं उठाना है, चाहे आज आप मैं उसको कुछ भी कहें, लेकिन है वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह अपने बंदों को रुसवा करता नहीं है। अगर बंदा खुद रुसवा होना ना चाहे तो आज के बाद आपने जब भी इसको पढ़ना है देख के पढ़िए, अभी कोई बुरी बात नहीं है, ये जुबानी याद होते होते हो जाएंगे, लेकिन फीलिंग्स के साथ पढ़िए। यहाँ आप देख रहे हैं कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तैयारी, जहनी तैयारी पे रखें। काफी लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, कोई कहते हैं हमें टेंशन है, कोई कहते हैं स्ट्रेस है, कोई कहते हैं एंग्जाइटी है। आप आज से ये दुआएं अपने पास रखें और पढ़ें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अगली दुआ भी बहुत ही प्यारी है, 11वां अमल जो अल्लाह के नबी सल्लम सोने से पहले किया करते थे। दुआ है, अल्लाहुम आलिमल गैबी वश्शहादती फातिर समावाति वल अर्दी रब्ब कुल्ली शय व मली कहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व मिन शर्री शैतानी व शिर्किही व अन अख्तरिफ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम। ए अल्लाह, जरा बेबसी को महसूस कीजिएगा। ए अल्लाह, ए गैब और हाजिर के जानने वाले, ए आसमानों यानी आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, ए हर चीज के रब और इसके मालिक, मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुझसे अपने नफ्स के शर से और शैतान के शर और इसके शिर्क से पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी कि मैं अपने ही नफ्स के खिलाफ किसी बुराई का इर्तकाब करूँ या इसे किसी मुसलमान की तरफ खींच लाऊं। क्या पता चला कि इस दुआ में पहली बात तो क्या है कि अल्लाह को गैब और शहादा यानी हाजिर का जानने वाला माना। जिस बंदे को अल्लाह की ये दो सिफात याद रहे, क्या वो तन्हाई में गुनाह कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। वो खलवत में, वो जलवत में, वो कोई गुनाह नहीं करेगा। कैसा शख्स लोगों के बीच में मस्ती में आकर गुनाह कर सकता है? देखिए ना, कोई बड़ा बंदा मैं देख रहा हूं तो हमें वैसे ही हया आने लग जाती है। बस सफा लोग अपने हम उम्र लोगों के बीच में मस्तियां करते हैं, छिछोरपन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एक बड़ा बंदा या बाइज्जत बंदा आके बीच में बैठ जाए, सब की खिगी बन जाती है, सब खामोश हो जाते हैं। आज से अपने ऊपर अल्लाह की निगाहें महसूस कीजिए। फातिर समावाति वल, इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन को फाड़ने वाला, पैदा करने वाला, कितना बड़ा होगा वो? जरा जमीन को सोचिए, आपके जहन में इस वक्त ग्लोब आना चाहिए। माइलेज, कितना दूर, कौन सा मुल्क, किससे, कितनी बड़ी जमीन, कितना समंदर, कितनी खुश्की, और साथ ही फिर आसमान सोचिए, ऊपर से नीचे चारों तरफ निगाह डालिए। आप अमेरिका में गए तो यही आसमान था, आप ऑस्ट्रेलिया में गए तो यही आसमान। कोई जोड़ नहीं, कोई जॉइंट्स नहीं, कोई बच्चों की तरह उसमें छोटे छोटे कर्व्स नहीं लगे हुए जो वो खेलते हैं, और छोटी छोटी गेम्स होती हैं उनकी, कार्ड्स जोड़ जोड़ के तस्वीरें बनाते हैं। एक छत है, कोई जोड़ नहीं। जरा सी बड़ी छत हो ना तो लोगों को पिलर्स लगाने पड़ते हैं, दीवारें लगानी पड़ती हैं। और आप सूरत रात में पढ़ते हैं, बेगैर आमदिन तरउनहा, बगैर सतूनों के तुम इसको देखते हो कि ये खड़े हैं। तुझे वो खुद कितना बड़ा होगा। और रब्बा कुल्ली शयीन, हर चीज का रब, और फिर मलीका हो, अपने फरिश्तों का भी रब। इंसान की अकल दंग रह जाती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत, उसकी शान, उसका अहाता नहीं कर सकता। अशहदु अल्ला इलाह इल्ला अंता, मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई नहीं है। ये तो ऐसे लगता है उस वक्त बंदे के दिल के अंदर से बात निकलती है। और आउज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी, जहाँ भी आप देखिए नफ्स के शर की फिक्र है। ईमान वाले को सबसे ज्यादा डर अपने नफ्स से लगता है। फिर वह मिन शर्री शैतान, फिर शैतान भी बुरा है, उसका भी शर है। वह शिरक ही और उसकी शराकत, वो जो वसवसे डालता है, जो अल्लाह के खिलाफ करता है, जो शिरक डालता है दिलों में, अल्लाह के माँ सिवा से डरना सिखाता है, उससे मांगना सिखाता है, उससे मोहब्बत करना सिखाता है, ये सारे शिरक है। वन अख्तरिफ आला नफसी सुअन, और ये कि मैं अपने नफ्स पर कोई बुराई खींच के ले आऊँ, इर्तकाबरिक तरफा, जैसे छीलने का मानी होता है ना, या आप 8वें पारे में शुरू में पढ़ते हैं, बोले उन्ना नजुलना में, आगे आप देखेंगे एक तरब, बहुत ही जैसे जबरदस्ती अपने ऊपर गुनाहों को मारना लाना। तो मैं अपने ही नफ्स के किसी बुराई का इर्तकाब करूं, या फिर किसी मुसलमान की तरफ खींच लाऊं। वा औ अजुर रहू इला मुस्लिम, मुराद क्या है कि सोते सोते अपने साथ और लोगों के साथ अपने मामलों को दुरुस्त करने की दुआ। डर नफ्स का भी है, शैतान का भी है, शिर्क का भी है। तो जो बंदा ऐसा कर ले, उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उसको शिर्क से बरी कर देगा। आइए शऊर के साथ इसको सीखते हैं।
اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي، وأن أقترف سوءا على نفسي، أو أجره إلى مسلم، أو أجره إلى مسلم، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي، أو أجره إلى مسلم.
آمین۔ بس ان چیزوں کو اپنا عقیدہ بنا لے، اپنی اللہ تعالیٰ سے باتوں کا ذریعہ بنا لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں نا، چاہے ہم کتنے بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، نیند بھی آ رہی ہوں، لیکن لیٹتے ہی और अगर आंखें भी बंद कर ले तो एकदम रील चलने लगती है, सारे दिन की बातें याद आती हैं, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, ये किया था। जब आपको ये बातें याद रहीं जो इस वक्त हम सीख रहे हैं, तो आप दिन भर की परेशानियां और कोई खानदान में से ऐसा चल रही, किसी का रिश्ता हो रहा, किसी का टूट रहा, कौन बिछड़ा कौन मिला, आपको फिक्र नहीं रहेगी इसकी, क्योंकि आप अल्लाह से बातें करें। अमूमन जब हम बिस्तर पे लेट के बड़े लयर और लीन मूड में होते हैं ना, तो हमें फिर बातें याद आती हैं, उसने ये कहा था, उसने मुझे ये कहा, नेगेटिविटी दिमाग में आती है, सारे दिन की बातें जो आप मसरूफियत की वजह से बस ओवर लुक कर रहे थे ना, उसकी याद आती है। सब का इलाज अल्लाह से बातें करें, और जिसको अपने रब से बातें करना आ गया, आप देखेंगे कि उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये सारी दुआएं शहूर से मांगनी है। थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक कदम बेबी स्टेप लेकर चलें, लेकिन रब से बातें करना सीखें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी दुआएं कर्बे कुर्बे इलाही का जरिया बनेंगी। असल बात ये कि हम जब अल्लाह से बात नहीं करते ना, तो फिर हमें बंदों से तो करनी पड़ती है ना। आजकल तो एक और मसला है कि हमारे हाथ में आखिरी वक्त तक फोन होता है, फोन पे अच्छी बातें बुरी बातें, ज़ाहिर है जैसे आप काम कर रहे हैं आप वैसी ही बातें करेंगे। अच्छे काम करने वालों के हाथों में हो सकता है किसी अच्छे काम के लिए फोन हो, इसी तरह बेकार टाइम किलर्स ये वो। और सुनाएं और कुछ भाई, हो गई बात खत्म करो, नहीं कुछ और कोई नई ताजी। तो वो जब सोएंगे तो उनको नई ताजियां याद रहेंगी ना। तो आप जिस चीज पे सोते हैं, अल्लाह की रहमत से और उसकी तौफीक से रात को ख्वाबों में भी वही चीज मिलती है। तो इंशाल्लाह ताला इन दुआओं के जरिए आपको अल्लाह से बातें करना आएगा। देखिए बड़ी बात नहीं कहती, और वो क्या है मिसाल, सिर्फ हमारे लिए है, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है। बच्चा बड़ा भी हो जाए ना, तो माँ को कहता है मेरे साथ लेटो, मुझे आपके साथ सोना है। अक्सर बच्चे बड़े भी होके माँ के साथ सोते हैं, फिर माँ सुलाती है, फिर वो जब सो जाते हैं फिर उठते हैं, फितरी सी बात। इस तरह आप देखिए हस्बैंड्स, अक्सर उनकी ख्वाहिश होती है सोने से पहले बीवी मौजूद हो, कोई बात करनी, कोई दुख सुख, कोई भी अच्छी बात, यानी ह्यूमन इनसिक्योरिटीज होती हैं। हमें लम्स बहुत अच्छा लगता है ना, बाज़ माएँ अपने बच्चों के बालों में हाथ फेरती हैं फिर वो सोते हैं। इस तरह आप देखेंगे कुछ बूढ़े घरों में अगर हैं तो ऑब्जर्व कीजिएगा, वो कहेंगे आओ मेरे पाँव दबा दो। असल में ना उनको ह्यूमन लम्स चाहिए होता है बातें का, फिर वो अपनी बातें सुनाएंगे। कोई भी पास बैठकर अगर उनसे कोई बात करे ना, तो वो फिर शुरू हो जाएंगे, आज ये हुआ वो हुआ, उसने ये कहा इसने ये कहा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप अल्लाह ताला के साथ बातें करते हैं ना, तो आपके अंदर की वो जो एक अर्ज है ना, एक कमी है, वो दूर होती है। फिर दुनिया में हर एक इतना खुशकिस्मत नहीं है कि उसके पास माँ हो जो उसको सुलाए, या अगर बीवी है या शौहर है, बहुत सारे लोग तन्हा है दुनिया में, ये भी एक हकीकत है। तो ऐसे तन्हा लोगों का बेहतरीन सहारा अल्लाह ताला है। इंशाल्लाह अगली दुआ में आप देखेंगे इसको।